दिसंबर 2019 की प्रहरी दुर्ग अध्ययन लेख 49। इस लेख का अध्ययन 3 फरवरी से 9 फरवरी के दौरान किया जाएगा। विषय काम और आराम का एक समय होता है। ये लेख मरकुस 6 के 31 पर आधारित है, जहां लिखा है, आओ किसी एकांत जगह में चलकर थोड़ा आराम कर लो। गीत 143, यहोवा के दिन की राह देखते रहें। लेख की एक झलक, बाइबल बताती है कि हम काम और आराम के बारे में किस तरह सही और संतुलित नजरिया रख सकते हैं। इस लेख में इसराइलियों को दिए गए शब्द के नियम के बारे में समझाया गया है, जिसे वो हर हफ्ते मानते थे। इस बारे में जानने से हम खुद की जांच कर पाएंगे कि क्या काम और आराम के बारे में हमारा नजरिया सही है। पैराग्राफ 1, सवाल, काम के बारे में लोगों का क्या नजरिया है? आज काम के बारे में ज्यादातर लोगों का क्या नजरिया है? आप जहां रहते हैं वहां लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? कई देशों में लोग घंटों काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उनके पास इतनी फुर्सत भी नहीं होती कि वो आराम कर सकें, परिवार को समय दे सकें या ईश्वर के लिए वक्त निकाल सकें। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो काम से दूर भागते हैं और काम ना करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। पैराग्राफ 2 और 3, सवाल, काम के बारे में यहोवा और यीशु ने क्या मिसाल रखी? काम के बारे में यहोवा और यीशु का नजरिया लोगों से बिल्कुल अलग है। इसमें कोई शक नहीं कि यहोवा मेहनती है। यीशु ने कहा, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम करता रहता हूं। यूहन्ना 5:17। जरा सोचिए, यहोवा ने लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों, तारों और ग्रहों को बनाने में कितनी मेहनत की होगी। यही नहीं, जब हम धरती पर चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमें यहोवा की कारीगरी के ढेरों सबूत मिलते हैं। भजन के एक लेखक ने बिल्कुल सही कहा था, हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत हैं। तूने ये सब अपनी बुद्धि से बनाया है। धरती तेरी बनाई चीजों से भरपूर है। भजन 104:24। यीशु हूबहू अपने पिता की तरह हैं। जब परमेश्वर ने आसमान को ताना तो यीशु ने एक कुशल कारीगर की तरह इस काम में उसका हाथ बंटाया। नीतिवचन 8:27-31। इसके सदियों बाद जब यीशु धरती पर आया तो उसने यहोवा का काम बहुत अच्छी तरह किया। यीशु के लिए ये काम उतना ही अहमियत रखता था जितना कि खाना। उसके कामों से साबित हुआ कि यहोवा ने ही उसे धरती पर भेजा था। पैराग्राफ 4, सवाल, आराम करने के मामले में हम यहोवा और यीशु से क्या सीखते हैं? जैसे हमने देखा, यहोवा और यीशु दोनों बहुत मेहनती हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें हर वक्त काम करते रहना चाहिए? जी नहीं। अगर यहोवा की बात करें तो वो हम इंसानों जैसा नहीं है। वो कभी नहीं थकता, पर हम थक जाते हैं। हाँ, बाइबल ये जरूर बताती है कि आकाश और पृथ्वी को बनाने के बाद यहोवा ने 7वें दिन विश्राम किया। निर्गमन 31:17। इसका मतलब है कि 7वें दिन यहोवा ने धरती पर सृष्टि का काम करना बंद कर दिया और उसने जो बनाया था उसका आनंद लिया। यीशु ने भी धरती पर रहते वक्त कड़ी मेहनत की, फिर भी उसने आराम करने और दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए वक्त निकाला। पैराग्राफ 5, सवाल, कई मसीहियों को क्या करना मुश्किल लगता है? बाइबल में परमेश्वर के सेवकों को बढ़ावा दिया गया है कि वो मेहनत करें और आलसी ना बने। हो सकता है आप अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए नौकरी करते हों। इसके अलावा मसीह के सभी चेलों को खुशखबरी सुनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इन कामों को करने के साथ साथ आपको आराम करने की भी जरूरत है। लेकिन क्या कभी आपको नौकरी, प्रचार काम और आराम के बीच सही तालमेल बिठाना मुश्किल लगता है? आप कैसे जान सकते हैं कि आपको कितना काम करना चाहिए और कितना आराम? काम और आराम के बारे में सही नजरिया कैसे रखें? पैराग्राफ 6, सवाल, मरकुस 6 के 30 से 34 से हमें कैसे पता चलता है कि यीशु काम और आराम के बारे में सही नजरिया रखता था? काम और आराम के बारे में सही नजरिया रखना बहुत जरूरी है। राजा सुलेमान ने परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा, हर एक काम का एक समय होता है, जैसे बोने का समय और उखाड़ने का समय, रोने का समय और हंसने का समय। सबोपदेशक 3:1-8। इससे पता चलता है कि जिंदगी में काम और आराम दोनों जरूरी हैं। इस मामले में यीशु ने एकदम सही नजरिया रखा। एक मौके पर जब उसके प्रेषित प्रचार करके लौटे तो वो इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें खाने तक की फुर्सत नहीं मिली। तब यीशु ने उनसे कहा, आओ तुम सब अलग किसी एकांत जगह में चलकर थोड़ा आराम कर लो। मरकुस 6:30-34 में लिखा है, यीशु के प्रेषित उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने लोगों के बीच जो जो काम किए थे और उन्हें जो जो सिखाया था वो सब उसे बताया। तब यीशु ने उनसे कहा, आओ तुम सब अलग किसी एकांत जगह में चलकर थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि वहां बहुत लोग आ जा रहे थे और उन्हें खाने तक की फुर्सत नहीं मिली थी। इसलिए वो एक नाव पर चढ़कर किसी एकांत जगह के लिए निकल पड़े, मगर लोगों ने उन्हें जाते देख लिया और बहुतों को इस बात का पता चल गया। तब सब शहरों से लोग दौड़कर उनसे पहले ही उस जगह जा पहुंचे। जब यीशु नाव से उतरा तो उसने लोगों की एक भीड़ देखी और उन्हें देखकर वो तड़प उठा, क्योंकि वो ऐसी भीड़ों की तरह थे जिनका कोई चरवाहा ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। भले ही यीशु और उसके प्रेषित हमेशा उतना आराम नहीं कर पाते थे जितना उन्हें करना चाहिए था, फिर भी यीशु जानता था कि उन्हें आराम की जरूरत है। पैराग्राफ 7। सवाल, सब्त के इंतजाम पर ध्यान देने से हमें क्या फायदा होगा? हम सबको समय समय पर थोड़ा आराम करना चाहिए, या हर दिन हम जो करते हैं उसे कुछ अलग करना चाहिए? इस बात को समझने के लिए एक इंतजाम पर ध्यान दीजिए जो परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए किया था। वो था सब्त का इंतजाम। हालांकि आज हम मूसा के कानून के अधीन नहीं हैं, फिर भी इस इंतजाम पर ध्यान देने से हमें फायदा होगा। इससे हम खुद की जांच कर पाएंगे कि काम और आराम के बारे में हमारा नजरिया सही है या नहीं। सब्त का दिन, आराम और उपासना का दिन। पैराग्राफ 8। सवाल, निर्गमन 31:12-15 के मुताबिक इसराइलियों को सब्त के दिन खास किस बात पर ध्यान देना था? समझाइए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने 6 दिन तक धरती पर अलग अलग चीजें बनाई, फिर उसने विश्राम किया। लेकिन यहोवा को काम करना अच्छा लगता है और कई मायनों में वो अब तक काम कर रहा है। यूहन्ना 5:17। जिस तरह यहोवा ने 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन आराम किया, उसी तरह उसने इसराइलियों को हर हफ्ते 7वें दिन आराम करने को कहा। परमेश्वर ने कहा कि सब्त उस करार की निशानी है जो उसने उनके साथ किया था। सब्त पूरे विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र दिन होता। निर्गमन 31:12-15 में लिखा है, यहोवा ने मूसा से ये भी कहा, तू इसराइलियों को ये बताना, तुम लोग मेरे सब्तों को मानने का खास ध्यान रखना, क्योंकि सब्त उस करार की निशानी है जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। ये निशानी तुम्हें पीढ़ी पीढ़ी तक इस बात की याद दिलाती रहेगी कि मुझ यहोवा ने तुम लोगों को पवित्र ठहराया है। तुम सब्त का नियम जरूर मानना, क्योंकि सब्त तुम्हारे लिए पवित्र है। अगर कोई उसे अपवित्र करता है तो उसे मौत की सजा दी जाए। अगर कोई सब्त के दिन काम करता है तो उसे मौत की सजा देकर अपने लोगों में से हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। तुम 6 दिन अपना कामकाज कर सकते हो, मगर 7वां दिन सब्त होगा, पूरे विश्राम का दिन। ये यहोवा के लिए पवित्र दिन है। अगर कोई सब्त के दिन काम करे तो उसे मार डालना चाहिए। उस दिन किसी को काम नहीं करना था, बच्चों और दासों को भी नहीं। जानवरों से भी कोई काम नहीं करवाया जाना था। इस तरह सब्त के दिन लोग अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की उपासना करने में लगा सकते थे। पैराग्राफ 9। सवाल, यीशु के दिनों में सब्त के बारे में कुछ लोगों की क्या गलत सोच थी? सब्त का दिन मनाने से यहोवा के लोगों का भला होता था, लेकिन अफसोस, यीशु के दिनों में धर्म गुरुओं ने सब्त के बारे में ढेर सारे सख्त नियम बना दिए थे। उनका ये तक कहना था कि इस दिन अनाज की बालें तोड़ना या किसी बीमार को ठीक करना कानून के खिलाफ है, लेकिन यहोवा उनकी टेढ़ी सोच से सहमत नहीं था और ये बात यीशु ने अपने सुनने वालों को साफ साफ बताई। पैराग्राफ 10। सवाल, मत्ती 12 का 9 से 12 के मुताबिक शब्द के बारे में यीशु की क्या सोच थी? यीशु और उसके यहूदी चेले मूसा के कानून के अधीन थे, इसलिए वो सप्त मनाते थे। फुटनोट, यीशु के चेले हर हाल में सप्त का नियम मानते थे, यहां तक कि जब यीशु की मौत हुई तो उन्होंने उसे दफनाने की तैयारियां कुछ वक्त के लिए रोक दी क्योंकि अगले दिन सप्त था। फुटनोट समाप्त। मगर यीशु ने अपनी बातों और अपने व्यवहार से यह भी जाहिर किया कि सप्त के दिन किसी की मदद करना गलत नहीं है। उसने साफ शब्दों में कहा, सप्त के दिन भला काम करना सही है। मत्ती 12 के 9 से 12 में लिखा है, वहां से वो उनके सभा घर में गया और देखो वहां एक आदमी था जिसका एक हाथ सूखा हुआ था। तब कुछ लोगों ने यीशु से पूछा, क्या सप्त के दिन बीमारों को ठीक करना सही है, ताकि उन्हें उस पर इल्जाम लगाने की कोई वजह मिल सके। उसने कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसके पास एक ही भेड़ हो और अगर वो भेड़ सप्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर बाहर न निकाले? तो सोचो एक इंसान का मोल भेड़ से कितना ज्यादा है, इसलिए सप्त के दिन भला काम करना सही है। यीशु की सोच उन धर्मगुरुओं से कितनी अलग थी। उसकी नजर में किसी पर दया करके उसकी मदद करना कानून का उल्लंघन करना नहीं था। इस तरह यीशु ने अपने कामों से जाहिर किया कि सप्त मनाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी। परमेश्वर के लोगों को इस दिन काम नहीं करना था, ताकि वो अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की उपासना पर लगा सकें। यीशु खुद एक ऐसे परिवार से था जो सप्त के दिन यहोवा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने पर पूरा ध्यान लगाता था। हम ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बाइबल बताती है कि जब यीशु अपने शहर नासरत में था तो अपने दस्तूर के मुताबिक वो सप्त के दिन वहां के सभा घर में गया और पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। लूका 4 का 15 से 19। पैराग्राफ 10 से संबंधित तस्वीर के बारे में, सप्त के दिन यूसुफ अपने परिवार को सभाघर ले जा रहा है। पैराग्राफ 10 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, यीशु का परिवार सप्त के दिन यहोवा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने पर ध्यान देता था। काम के बारे में आपका क्या नजरिया है? पैराग्राफ 11। सवाल, काम करने के मामले में कौन यीशु के लिए अच्छी मिसाल था? यूसुफ ने अपने बेटे यीशु को बढ़ई का काम सिखाया था और इस दौरान बेशक उसे काम के बारे में यहोवा की सोच भी बताई होगी। यीशु ने देखा होगा कि किस तरह यूसुफ अपने बड़े परिवार की देखभाल के लिए हर दिन मेहनत करता था। उसने आगे चलकर अपने चेलों से कहा, काम करने वाला मजदूरी पाने का हकदार है। लूका 10 का 7। इसमें कोई शक नहीं कि यीशु ने कड़ी मेहनत करना सीखा था। पैराग्राफ 12। सवाल, किन आयतों की मदद से हमें कड़ी मेहनत के बारे में पौलुस की सोच पता चलती है? प्रेषित पौलुस भी कड़ी मेहनत करना जानता था। उसका मुख्य काम था यीशु और उसकी शिक्षाओं के बारे में प्रचार करना, लेकिन पौलुस अपना गुजारा चलाने के लिए भी मेहनत करता था। थिस्लोनिके के भाई बहन जानते थे कि पौलुस रात दिन कड़ी मेहनत और संघर्ष करता है ताकि वो किसी पर खर्चीला बोझ न बने। दूसरा थिस्लोनिकियों 3 का 8। जब पौलुस ने अपने काम के बारे में लिखा तो शायद वो तंबू बनाने के काम की बात कर रहा था। पौलुस कुरिंथ में अक्विला और प्रिस्किला के यहां रहा और इस दौरान उसने उनके साथ काम किया क्योंकि वो भी तंबू बनाया करते थे। जब पौलुस ने कहा कि वो रात दिन काम करता है तो उसका ये मतलब नहीं था कि वो काम में ही डूबा रहता है। सप्त के दिन वो ये काम नहीं करता था। इसके बजाय वो यहूदियों को प्रचार करता था जो उसकी तरह सप्त के दिन काम नहीं करते थे। प्रेषितों 18 का 1 से 4। पैराग्राफ 13। सवाल, हम पौलुस से क्या सीख सकते हैं? प्रेषित पौलुस अपना गुजारा चलाने के साथ साथ परमेश्वर की खुशखबरी सुनाने का पवित्र काम भी करता रहा। रोमियो 15 का 16। उसने दूसरों को भी प्रचार करते रहने का बढ़ावा दिया। इस वजह से अक्विला और प्रिस्किला मसीह यीशु में उसके सहकर्मी थे। रोमियो 16:3। पौलुस ने कुरिंथ के मसीहों को ये बढ़ावा दिया, प्रभु की सेवा में हमेशा तुम्हारे पास बहुत काम हो। 1 कुरिन्थियों 15:58। परमेश्वर की प्रेरणा से पौलुस ने यह भी लिखा, अगर कोई काम नहीं करना चाहता तो उसे खाने का भी हक नहीं है। 2 थिस्सलुनीकियों 3:10। वाकई हम पौलुस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पैराग्राफ 14। सवाल, यूहन्ना 14:12 में दर्ज यीशु के शब्दों का क्या मतलब है? इन आखिरी दिनों में सबसे अहम काम है प्रचार और चेला बनाने का काम। दरअसल यीशु ने कहा था कि उसके चेले उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। यूहन्ना 14:12 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो भी वो काम करेगा जो मैं करता हूं, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। यीशु का ये मतलब नहीं था कि वो उसकी तरह चमत्कार करेंगे। इसके बजाय वो ये कह रहा था कि उसके चेले बड़े पैमाने पर प्रचार काम करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो वो यीशु से भी ज्यादा इलाकों में प्रचार करेंगे, उससे ज्यादा लोगों को सिखाएंगे और उससे ज्यादा समय तक प्रचार काम करेंगे। पैराग्राफ 15। सवाल, आपको खुद से कौन से सवाल करने चाहिए और क्यों? अगर आप नौकरी करते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं काम की जगह पर मेहनती होने के लिए जाना जाता हूं? क्या मैं पूरी लगन से अपना काम करता हूं और उसे समय पर पूरा करता हूं? अगर आपका जवाब हां है तो आप अपने मालिक का भरोसा जीत पाएंगे। यही नहीं, जब आप अपने सहकर्मियों को गवाही देंगे तो वो आपकी बात अच्छे से सुनेंगे। अब प्रचार और सिखाने की बात लीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं प्रचार में कड़ी मेहनत करने के लिए जाना जाता हूं? क्या मैं लोगों से बात करने के लिए अच्छी तैयारी करता हूं? क्या मैं दिलचस्पी रखने वालों से जल्द दोबारा मिलने की कोशिश करता हूं? क्या मैं प्रचार के अलग अलग पहलुओं में नियमित तौर पर हिस्सा लेता हूं? अगर आपका जवाब हां है तो आपको अपनी सेवा से खुशी मिलेगी। आराम के बारे में आपका क्या नजरिया है? पैराग्राफ 16। सवाल क, आराम करने के बारे में यीशु और उसके प्रेषितों की क्या सोच थी? सवाल ख, लेकिन आज ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? यीशु के दिनों में कई लोगों की सोच उस अमीर आदमी की तरह थी जिसके बारे में यीशु ने एक मिसाल में बताया था। उस आदमी का मानना था कि आराम करना और मौज मस्ती करना ही सब कुछ है। वो मनी मन खुद से कह रहा था, अब चैन से जी, खा पी और मौज कर। लूका 12:19। आज भी कई लोग इस अमीर आदमी की तरह सोचते हैं, लेकिन यीशु उनसे कितना अलग था। ये सच है कि वो इस बात को समझता था कि कभी कभी उसे और उसके प्रेषितों को आराम की जरूरत है, मगर यीशु और उसके प्रेषितों के लिए आराम करना ही सब कुछ नहीं था। पैराग्राफ 17। सवाल, छुट्टियों में हम अपने समय का कैसे इस्तेमाल करते हैं? आज हम यीशु की मिसाल पर कैसे चलते हैं? जिस दिन हमें काम पर नहीं जाना होता है उस दिन हम ना सिर्फ आराम करते हैं बल्कि प्रचार में और सभाओं में भी जाते हैं। देखा जाए तो प्रचार और सभाएं हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं, इसलिए हम इन कामों में हिस्सा लेने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। जब हम छुट्टियां बिताने कहीं और जाते हैं तब भी हम सभाओं में लगातार हाजिर होते हैं और लोगों को गवाही देने के मौके ढूंढते हैं। पैराग्राफ 17 से संबंधित तस्वीर के बारे में, एक पिता अपने परिवार का पेट पालने के लिए नौकरी करता है। जब उसे काम से छुट्टी मिलती है तो वो प्रचार करता है और सभाओं में जाता है। वो ऐसा तब भी करता है जब वो और उसका परिवार छुट्टियां बिताने कहीं और जाते हैं। पैराग्राफ 17 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, काम और आराम के बारे में सही सोच रखने से हम भले काम करने पर अपना ध्यान लगा पाएंगे और इससे हमें ताजगी मिलेगी। पैराग्राफ 18। सवाल, हमारा राजा मसीह यीशु हमसे क्या चाहता है? हम इस बात के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारा राजा मसीह यीशु हमसे बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं करता और वो हमें आराम और काम के बारे में सही नजरिया रखना सिखाता है। वो चाहता है कि जब हमें जरूरत हो हम आराम करें। वो ये भी चाहता है कि हम रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में कड़ी मेहनत करें और चेला बनाने का काम करें जिससे हमें ताजगी मिल सकती है। अगले लेख में हम देखेंगे कि यीशु ने हमें एक किस्म की कठोर गुलामी से आजाद कराने के लिए क्या किया है। आप क्या जवाब देंगे? काम के बारे में हम यहोवा और यीशु से क्या सीखते हैं? सप्त मनाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? इससे हमें क्या सीख मिलती है? काम और आराम के बारे में सही सोच रखना जरूरी क्यों है? गीत 38, वो तुम्हें मजबूत करेगा। लेख समाप्त।